एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, उत्तर उपनिवेशवाद यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म।
हाँ, और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं रॉबर्ट जे सी यंग के विचारों का।
जी हाँ, खासतौर पर उनकी किताब पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनके काम के एक और विस्तृत सार का।
हाँ, और ये विषय सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक सा लगे, पर असल में ये हमारी आज की दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल।
हम अक्सर सोचते हैं ना कि क्यों कुछ देशों में आज भी इतनी गरीबी है, या फिर अलग अलग संस्कृतियों में इतना तनाव क्यों रहता है, या हमारी अपनी पहचान, हमारी भाषा, हमारी सोच पर किसका असर है। इन सारे सवालों के तार मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के इतिहास और उसकी विरासत से जुड़े हैं।
बिल्कुल। उपनिवेशवाद तो शायद कागज पर खत्म हो गया, पर क्या उसकी छाया वाकई हमारे ऊपर से हट गई है? ये एक बड़ा सवाल है।
सही बात है।
रॉबर्ट यंग हमें यही समझने का एक नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ बीते कल की बात नहीं है, बल्कि आज को समझने और शायद बदलने का एक तरीका है।
अच्छा, तो चलिए आज की इस चर्चा में इसी उलझे हुए लेकिन जरूरी विषय की परतें खोलते हैं।
जी,
तो शुरुआत करते हैं रॉबर्ट यंग से ही। ये है कौन और इनकी बातों में ऐसा क्या खास है कि हमें इन्हें सुनना चाहिए?
देखिए, रॉबर्ट यंग पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज और क्रिटिकल थियरी की दुनिया में काफी बड़ा नाम है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेकिन उनकी सबसे खास बात शायद ये नहीं कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, बल्कि वो विचारों के इतिहास को जमीनी हकीकत से, असली राजनीतिक आंदोलनों से जोड़कर देखते हैं।
अच्छा, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन से जुड़ा हो।
हाँ हाँ, यही उनका फर्क है। जहाँ कई विचारक सिर्फ साहित्य या विचारों का विश्लेषण करते रह जाते हैं, यंग हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ये विचार पैदा कहाँ से हुए। और वो कहते हैं कि ये विचार यूनिवर्सिटी के कमरों से नहीं, बल्कि उपनिवेशों की आज़ादी की लड़ाई के मैदानों से निकले हैं।
अरे वाह।
वो फ्रांस फैनन या एडवर्ड सईद जैसे बड़े विचारकों की बातों को असलियत के संघर्षों से जोड़कर दिखाते हैं।
ये तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए अब उनकी किताब पर आते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ विषय का परिचय देना है?
परिचय तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। यंग इस किताब के जरिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में फैली एक, आप कह सकते हैं, बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं।
कैसी गलतफहमी?
वो कहते हैं कि आजकल लोग इसे सिर्फ भारी भरकम शब्दों वाला एक अकादमिक विषय मान लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि इसकी जड़ें राजनीतिक संघर्षों में हैं, दुनिया को बदलने की कोशिशों में हैं।
अच्छा, तो यंग का सबसे बड़ा तर्क क्या है इसमें? वो कौन सी एक चीज है जो वो चाहते हैं कि पाठक जरूर समझें?
उनका सबसे जोरदार और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क ये है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का असली जन्म यूनिवर्सिटी या किताबों में नहीं हुआ,
तो कहाँ हुआ?
बल्कि 1966 में हवाना, क्यूबा में हुए ट्राइकॉन्टिनेंटल सम्मेलन यानी ट्राइकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ।
ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी जहाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी आंदोलन और जो नए नए आजाद हुए देश थे वो एक साथ आए थे।
ट्राइकॉन्टिनेंटल सम्मेलन, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। ये इतना अहम क्यों था यंग के लिए?
क्योंकि यंग के मुताबिक यही वो पल था जब तीसरी दुनिया ने मिलकर साम्राज्यवाद और खासकर अमेरिकी दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। यंग कहते हैं कि यहीं से पोस्ट कॉलोनियल सोच की असली राजनीतिक ताकत पैदा हुई।
अच्छा, ये दिखाता है कि ये विषय सिर्फ संस्कृति या पहचान की बात नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और एक नई, ज्यादा न्याय वाली दुनिया बनाने का प्रोजेक्ट था।
तो ये अकादमिक दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती हुई।
हाँ बिल्कुल। क्या हम इन विचारों को सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज मानते हैं या बदलाव का एक हथियार? ये सवाल यंग उठाते हैं।
वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो यंग सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहे हैं बल्कि उसके राजनीतिक दिल की धड़कन सुना रहे हैं।
सही कहा।
चलिए थोड़ा और समझते हैं कि उपनिवेशवाद आखिर था क्या चीज यंग की नजर से। क्या ये सिर्फ कब्जा करना था?
नहीं, यंग ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ जमीन पर कब्जा या राजनीतिक गुलामी नहीं थी। उपनिवेशवाद एक पूरा सिस्टम था, एक हिंसक परियोजना जिसके दो पहलू थे।
दो पहलू कैसे?
एक तो था सीधा कंट्रोल, फौज, पुलिस, कानून वगैरह, लेकिन दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक और गहरा था। वो था दिमागी कंट्रोल।
दिमागी कंट्रोल मतलब?
वो सभ्य बनाने का मिशन वाली बात जो चलती थी। बिल्कुल, वही यंग इसी सभ्य बनाने के मिशन यानी सिविलाइजिंग मिशन का पर्दाफाश करते हैं। ये एक विचारधारा थी जिसे यूरोप की ताकतों ने अपनी लूट और हुकूमत को सही ठहराने के लिए गढ़ा था। उन्होंने कहा कि वो पिछड़े हुए लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि पश्चिमी संस्कृति, ज्ञान, भाषा ही सबसे बेहतर है और बाकी सब या तो बेकार हैं या कमतर हैं।
और इसी सोच ने फिर उनके शोषण को जायज ठहराया।
हाँ, आर्थिक मकसद तो साफ थे, कच्चा माल लूटना अपने सामान के लिए, बाजार बनाना, सस्ता या मुफ्त का मजदूर पाना, ये सब तो था ही
जी।
लेकिन ये सब मुमकिन हुआ उस नस्लीय और सांस्कृतिक घमंड की वजह से। और यहीं पर यंग एपिस्टेमिक वायलेंस यानी ज्ञान पर हिंसा की बात करते हैं।
ज्ञान पर हिंसा, ये क्या है, थोड़ा और समझाएंगे?
सोचिए, किसी के घर जाकर आप सिर्फ उनका सामान ही नहीं लूटते बल्कि उनके पूजा घर को तोड़कर अपनी मूर्ति रख देते हैं।
हाँ,
उनकी भाषा बोलने से मना कर देते हैं, उनके तीज त्योहारों को जंगली बताकर बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि उनका तो जीने का तरीका ही गलत है, सोचना भी गलत है।
ओह,
यही है ज्ञान पर हिंसा, दूसरों के ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान को एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करना और अपना नजरिया, अपनी भाषा, अपना ज्ञान उन पर थोपना।
तो उपनिवेशवाद ने यही किया।
हाँ, उसने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, लोगों से उनकी कहानियां, उनका इतिहास, उनकी आत्मा छीनने की कोशिश की।
ये तो बहुत गहरा असर है, शायद इसीलिए इससे उबरना इतना मुश्किल रहा है ना?
बिल्कुल।
लेकिन लोग चुप तो नहीं बैठे होंगे, प्रतिरोध भी तो हुआ होगा।
बिल्कुल हुआ, और यही यंग के विश्लेषण का दूसरा अहम हिस्सा है, प्रतिरोध। वो दिखाते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में जबरदस्त आंदोलन हुए।
किस तरह के आंदोलन?
और ये आंदोलन कई तरह के थे, कहीं शांति से राजनीतिक बातचीत हुई, कहीं लोगों ने अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने की लड़ाई लड़ी, और कहीं हथियारबंद संघर्ष भी हुए। यंग इस बात पर जोर देते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन्हीं प्रतिरोधों से पैदा हुआ है, ये उपनिवेशवाद के बाद यानी पोस्ट का समय नहीं बल्कि उसी संघर्ष की निरंतरता है।
अच्छा, तो ये संघर्ष जारी है एक तरह से।
हाँ,
तो पोस्ट कॉलोनियल विचारक कौन थे जिन्होंने इस प्रतिरोध को आवाज दी?
यंग कई लोगों का जिक्र करते हैं, जैसे एम एस सेजेर और फ्रांस फानन। फैनन ने खास तौर पर इस बात का गहरा विश्लेषण किया कि उपनिवेशवाद लोगों के मन पर, उनकी सोच पर क्या जख्म छोड़ जाता है।
हाँ, फैनन का नाम तो सुना है।
उन्होंने दिखाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं थी बल्कि उस मानसिक गुलामी से निकलने, अपनी खोई हुई गरिमा और इतिहास को वापस पाने के लिए भी थी।
और यहीं पर शायद उन लोगों की बात आती है जिनकी आवाज इतिहास में दबा दी गई, वो सबॉल्टर्न वाली अवधारणा जो है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने ये सवाल उठाया कि इतिहास में हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों, खासकर गरीब, ग्रामीण, उपनिवेशित महिलाओं की आवाज को क्या हम सचमुच सुन सकते हैं? उनका मशहूर सवाल है, क्या सबॉल्टर्न बोल सकती है? Can the subaltern speak? इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकती, बल्कि ये कि क्या सत्ता के ढांचे और हमारे सुनने के तरीके ऐसे हैं कि उनकी बात बिना तोड़े मरोड़े उनके सही अर्थों में हम तक पहुंच सके?
ये सोचने वाली बात है।
ये हमें याद दिलाता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं या बदलाव की बात करते हैं तो हमें हमेशा पूछना चाहिए किसकी आवाज गायब है।
ये तो बहुत जरूरी सवाल है आज भी। तो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, लोग आजाद हुए, लेकिन पहचान का सवाल तो बना रहा होगा। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान कैसी गढ़ी जाए उस सारी तोड़फोड़ के बाद।
बिल्कुल, और यहीं पर होमी के भाभा जैसे विचारक संकरता यानी हाइब्रिडिटी की बात करते हैं।
हाइब्रिडिटी?
हाँ, उपनिवेशवादी ताकतें तो हर तरह के मिश्रण, चाहे वो नस्लीय हो या सांस्कृतिक हो, उसे खराब मानती थी, उसे अपनी शुद्धता के लिए खतरा समझती थी।
हाँ।
लेकिन पोस्ट कॉलोनियल सोच ने इस आइडिया को पलट दिया।
कैसे? मतलब हाइब्रिडिटी अच्छी कैसे हो गई?
भाभा और यंग जैसे विचारक कहते हैं कि जब दो संस्कृतियां टकराती हैं, खासकर उपनिवेशवाद जैसी असमान स्थिति में, तो जो नई चीजें बनती हैं वो ना तो पूरी तरह एक होती हैं ना दूसरी, वो एक मिलाजुला संकर रूप होती हैं।
ओके।
और ये मिलावट कमजोरी नहीं बल्कि रचनात्मकता और प्रतिरोध की जगह बन सकती है।
अच्छा, कोई उदाहरण?
जैसे हमारी आज की भाषा हिंदी में कितने अंग्रेजी, फारसी, अरबी शब्द घुल मिल गए हैं, या हमारा खाना, हमारा संगीत, ये सब हाइब्रिडिटी के उदाहरण हैं।
हाँ, ये तो है।
ये दिखाता है कि संस्कृति कोई बंद डिब्बा नहीं बल्कि एक बहती नदी है जिसमें बहुत कुछ आकर मिलता रहता है।
तो ये हम बनाम वे वाली जो सोच थी उसको चुनौती देती है।
हाँ बिल्कुल, ये उन खांचों को तोड़ती है जिन पर उपनिवेशवाद टिका था, कि एक शुद्ध पश्चिमी संस्कृति है और एक पिछड़ी देसी संस्कृति। हाइब्रिडिटी दिखाती है कि पहचान हमेशा बनती रहती है, बदलती रहती है। ये एक तीसरा स्थान, थर्ड स्पेस बनाती है जहां नई पहचानें गढ़ी जा सकती हैं, जो न तो पूरी तरह उपनिवेशक की नकल हैं, न ही किसी काल्पनिक शुद्ध अतीत की वापसी। ये जटिलता ही इसकी ताकत है।
ये तो पहचान को देखने का एक ज्यादा लचीला और कह सकते हैं सकारात्मक तरीका लगता है।
जी हाँ।
लेकिन क्या उपनिवेशवाद का असर सिर्फ इतिहास, संस्कृति और पहचान तक ही सीमित रहा? आज की दुनिया में, खासकर अर्थव्यवस्था में, इसका क्या लेना देना है?
यहीं पर यंग हमें नव उपनिवेशवाद की हकीकत से रूबरू कराते हैं।
नव उपनिवेशवाद?
हाँ, वो कहते हैं कि राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद भी कई पूर्व उपनिवेश आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उन्हीं पुरानी ताकतों या फिर नई वैश्विक शक्तियों पर निर्भर रह गए हैं।
अच्छा, जैसे?
जैसे आज हम देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां विकासशील देशों की नीतियों को प्रभावित करती हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल आज के दौर में दिखता है, जैसे कई अफ्रीकी या एशियाई देशों का भारी कर्जे में फंसना।
बिल्कुल,
ये सीधे कब्जे जैसा नहीं पर कंट्रोल तो है।
बिल्कुल, यंग तर्क देते हैं कि जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, वो कई मायनों में साम्राज्यवाद का ही एक नया रूप है। आज भी पैसा, संसाधन, प्रतिभा गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ बह रहे हैं। विकासशील देशों को अक्सर ऐसी शर्तों पर व्यापार या मदद मिलती है जो उन्हें और ज्यादा निर्भर बना देती है।
तो पोस्ट कॉलोनियल नजरिया इसमें कैसे मदद करता है?
ये नजरिया हमें इस नए किस्म के आर्थिक और सांस्कृतिक दबदबे को पहचानने और समझने में मदद करता है। ये याद दिलाता है कि वो पुरानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदल गया है।
तो इस पूरी बातचीत से, यंग के विचारों से, कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या सार है इसका?
मेरे लिए सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म सिर्फ किताबों में पढ़ने की थ्योरी नहीं है। ये जमीनी संघर्षों से निकली है और इसका रिश्ता राजनीति और बदलाव की कोशिशों से है। यंग का वो ट्राई कॉन्टिनेंटल पर जोर देना यही याद दिलाता है।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात शायद ये कि उपनिवेशवाद का भूत मरा नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है।
सही कहा, ये इतिहास का कोई बंद पन्ना नहीं है। इसका असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी राजनीति में, हमारे समाज में, यहाँ तक कि हमारी सोच और भाषा में भी जिंदा है।
हाँ,
नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद, सांस्कृतिक टकराव, ये सब उसी की देन है। पोस्ट कॉलोनियल नजरिया हमें इन चीजों को देखने और समझने का एक लेंस देता है।
एक और बात जो मुझे अहम लगी वो ये कि ये सिर्फ पीड़ितों की कहानी नहीं है, ये प्रतिरोध की, संघर्ष की, अपनी आवाज और पहचान वापस पाने की कोशिशों की भी कहानी है।
बिल्कुल, यंग उपनिवेशित लोगों को सिर्फ बेचारा या लाचार नहीं दिखाते, वो उनकी हिम्मत, उनकी रचनात्मकता, उनके संघर्ष का जश्न मनाते हैं। चाहे वो हथियार उठाकर लड़े हों या अपनी कलम से, अपनी कला से, ये उनकी ताकत की कहानी भी है।
और संस्कृति, संस्कृति जैसे एक जंग का मैदान है ना, जहाँ पहचान की लड़ाई लड़ी गई और आज भी लड़ी जा रही है।
हाँ, और इसीलिए मन की आज़ादी यानी डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड उतनी ही जरूरी है जितनी राजनीतिक आज़ादी।
सही बात।
जब तक हम दुनिया को सिर्फ यूरोप या पश्चिम के चश्मे से देखते रहेंगे, तब तक शायद हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं।
क्या यंग की किताब या उनके विचारों में कुछ ऐसी पंक्तियाँ या आइडियाज हैं जो खास तौर पर दिमाग में अटक जाते हैं, जिन्हें हम कोट की तरह याद रख सकें?
हाँ, सीधे शब्दों में तो नहीं, पर उनके तर्कों का सार कुछ इस तरह से समझा जा सकता है।
बताइए।
पहला, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को यूनिवर्सिटी में बनी थियरी नहीं, ये आज़ादी के लिए लड़ने वालों के राजनीतिक एक्शन का ही सैद्धांतिक रूप है। इसका दिल हवाना में धड़कता था, अकादमिक गलियारों में नहीं। मतलब सिद्धांत जमीन से पैदा होता है।
ये तो सीधा उनके मूल तर्क पर चोट करता है। और
दूसरा, उपनिवेशवाद की ताकत के बारे में। उपनिवेशवाद की असली ताकत सिर्फ फौज या कानून में नहीं थी, बल्कि इतिहास और ज्ञान को कंट्रोल करने में थी, दुनिया की एक ऐसी तस्वीर बनाने में जिसमें पश्चिम महान था और बाकी सब पर राज करने के लिए बना था। एडवर्ड सईद ने इसी को ओरिएंटलिज्म कहा था।
हाँ, वो ज्ञान पर हिंसा वाली बात, यानी सबसे गहरा कब्जा दिमाग पर था।
बिल्कुल, और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज के बारे में स्पिवाक के हवाले से ये बात याद रखनी चाहिए, हमें हमेशा पूछना चाहिए किसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इतिहास में सबसे दबे कुचले लोगों की आवाजें, खासकर गरीब औरतों की, अक्सर गायब होती हैं। क्या हम सच में उन्हें सुन सकते हैं बजाय उनके लिए बोलने के?
ये हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है, बहुत जरूरी बात।
जी,
और एक आज के जमाने से जुड़ा हुआ कोई विचार?
हाँ, वैश्वीकरण पर। आज का वैश्वीकरण कई तरीकों से पुराने उपनिवेशवाद का ही नया चोला है, पैसे का बहाव, मजदूरों का शोषण, अमीर देशों के कल्चर का गरीब देशों पर थोपा जाना, ये सब वही पुरानी कहानी दोहराता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म हमें इस नए खेल को पहचानने और चुनौती देने के औजार देता है।
ये इसे आज के लिए बेहद प्रासंगिक बनाता है।
बिल्कुल,
ये बातें तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, पर क्या इन भारी भरकम विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है? हम इन्हें कैसे काम में ला सकते हैं?
क्यों नहीं, बहुत तरीकों से। जैसे हम जब फिल्में देखते हैं या समाचार पढ़ते हैं तो इस नजरिए से देख सकते हैं कि उनमें गैर पश्चिमी देशों या लोगों को कैसे दिखाया जा रहा है।
अच्छा,
कहीं उनमें वही पुराने घिसे पिटे विचार तो नहीं झलक रहे कि वो लोग अजीब हैं, पिछड़े हैं, खतरनाक हैं? इसे एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म कहा था।
हाँ।
तो ये हमें मीडिया को ज्यादा बारीकी से समझने में मदद करता है
और अपनी पहचान या इतिहास को समझने में।
हाँ, हम अपने देश की इतिहास को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देख सकते हैं। हमारे इतिहास की किताबों में किसकी कहानी ज्यादा है, किसकी कम, कौन से नायक हैं, कौन खलनायक और क्यों। और जो लोग डायस्पोरा में रहते हैं, यानी अपने मुल्क से बाहर, उनके लिए हाइब्रिडिटी का आइडिया अपनी मिलीजुली पहचान को समझने में मदद कर सकता है, इसे कमी नहीं बल्कि एक अनोखी ताकत मानने में।
क्या सामाजिक न्याय या एक्टिविज्म के कामों में भी इसका कोई रोल है?
जरूर। सबॉल्टन का विचार हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी अच्छे काम के लिए भी लड़ रहे हों तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हम खुद ही किसी और समूह की आवाज को अनजाने में दबा तो नहीं रहे।
हाँ, ये जरूरी है।
ये हमें सिर्फ दूसरों के लिए बोलने के बजाय उन्हें खुद बोलने का मौका देने के लिए प्रेरित करता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद यही थी कि उपनिवेशवाद का असर कितना गहरा और कितना स्थायी है। यह सिर्फ जमीन या राजनीति का मामला नहीं था, यह हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारे ज्ञान पर एक हमला था जिसे यंग ज्ञान पर हिंसा कहते हैं। और दूसरी तरफ हाइब्रिडिटी जैसी अवधारणा ये दिखाती है कि इस हमले के बावजूद संस्कृतियां कैसे मिलती हैं, बदलती हैं और कुछ नया रचती हैं। ये पहचान को एक बोझ नहीं बल्कि एक संभावना की तरह देखने में मदद करता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यंग का पोस्ट कॉलोनियलिज्म को सीधे राजनीतिक संघर्षों से जोड़ना है, खासकर उस ट्राई कॉन्टिनेंटल सम्मेलन के जरिए। ये याद दिलाता है कि ये विचार हवा में नहीं पैदा हुए बल्कि जमीन पर खून पसीने से सींचे गए हैं।
सही कहा।
ये सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक एजेंडा भी हो सकता है। संक्षेप में, यंग हमें दिखाते हैं कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमारे आज में सांस लेता है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की कहानी नहीं बल्कि मन की गुलामी से मुक्ति की भी कहानी है।
हाँ,
ये हमें दुनिया को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देशों के अनुभवों और संघर्षों से देखने की प्रेरणा देता है। ये उन ताकतों को पहचानने में मदद करता है जो आज भी दुनिया में गैर बराबरी और अन्याय फैला रही हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।